आज सुबह हम 10वीं आयत पर गौर करेंगे जहां लिखा है, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता जानता है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। इस कलाम का थोड़ा सा पस मंज़र ये है, 22वें बाब में अय्यूब के एक बहुत ही करीबी साथी और दोस्त जिसका नाम है अलीफस तिमानी, 22वां बाब अगर आप घर में जाके पढ़े तो 22वें बाब का लुबे लबाब ये है कि अय्यूब का दोस्त जब अय्यूब को बीमार देखता है, उसके बदन में पस पड़ी हुई है, बदबू आती है, कीड़े चल रहे हैं और उसकी बुरी हालत, बुरा हशर है उसका, तो तीन दोस्त आए हैं उसको तसल्ली देने के लिए। जब वो तसल्ली देने के लिए आए तो वो तसल्ली देने के लिए थे, उसका दुख बांटने के लिए, बोझ उठाने के लिए आए थे। लेकिन जब हम कलाम की तिलावत करते हैं तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो अय्यूब क्यों बीमार हुआ, उसका घर बार क्यों लुट गया, उसको क्यों माली नुकसान हुआ, क्यों वो मसाइल का शिकार रहा, और एक खुदा परस्त और मशहूर खुदा परस्त होने के नाते उसकी हालत जो किसी गुनाहगार बदकार की होती है उस तरह की क्यों हो गई, वो इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं तीनों। और वो जवाब तलाश करते करते वो घूम फिर कर, वो आए तसल्ली देने थे लेकिन अपनी गुफ्तगू से वो अय्यूब के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। 22वां बाब जो है उसका लुबे लबाब ये है कि अलीफज तिमानी अय्यूब के दोस्तों में से एक दोस्त उसको ये बता रहा है कि तेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह है जिसकी वजह से तुझे खुदा सजा दे रहा है, तू बीमार इसलिए हुआ है। अब वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं है, ना इन दोस्तों को वजूहात का इलम है और ना जिस पर आजमाइश आई हुई है उसको इलम है, वो भी खुदा से शिकायत करता है, गिला करता है, अपने गिरेबान में झांक कर देखता है और सोचता है कि कहाँ मेरे से कोई इतनी बड़ी कोई बदकारी या पाप या गुनाह हुआ है जिसके नतीजे में मेरी ये हालत है। जब वो अपने आप को जांचता है तो उसे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती। होता ये है कि आज की दुनिया में आज के बेशतर ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने अय्यूब की किताब में से उसके दोस्तों की गलती से कोई सबक नहीं सीखा। और वो सबक क्या है कि बहुत सारी बातें, वाकयात, हादसात हम इंसानों के साथ, खुदा प्रस्तों के साथ, ईमानदारों के साथ, मुकद्दसीन के साथ पेश आते हैं जिनकी वजूहात का हमें इलम नहीं होता है, हम जानते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम रायजनी करने से बाज नहीं आते। अय्यूब के तीनों दोस्त जो थे वो बुज़ुर्ग थे, वो बड़े तजर्बाकार थे, उनको अय्यूब से मोहब्बत भी थी, जब वो आए थे उन्होंने अपने गिरेबान चाक किए थे, अपने ऊपर खाक डाली थी और वो धाड़े मार मार रोए थे अपने दोस्त की, पहली दफ़ा जब उन्होंने शक्ल देखी कि इसकी हालत क्या हुई हुई है, दूर दराज से सफ़र करके दुख और बोझ बांटने के लिए वो आए थे, हमदर्दी और लगाव का, मोहब्बत का, उन्स का इजहार करने के लिए वो आए थे, और उन्होंने शुरू में ऐसा किया भी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जानने की कोशिश करते हुए कि हमारे दोस्त की ये हालत क्यों है, तो वो गलती के मुर्तकिब हुए, उन्होंने ये समझा कि देखिए किसी रास्तबाज पर तो मुसीबत थोड़ी आती है, उसको तो खुदा संभालता है, वो तो कभी मुश्किल में हो ही नहीं सकता, वो तो शिकस्त नहीं खा सकता, कमज़ोर नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता, तो अगर ये हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गुनाह इसके अंदर है जिसकी सज़ा इसको मिल रही है। ये सारी बात आपको अय्यूब की किताब के 22वें बाब में मिलेगी। इस पस मंजर में अय्यूब नबी ये कह रहे हैं, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। वो अपने दोस्तों को जवाब ये दे रहा है कि आप समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, मैंने खुदा की किसी ना किसी जगह पर तौहीन की है, नाराज़ किया है, और मेरी ज़िंदगी में कोई बदी है, कोई गुनाह है, ये तुम्हारी नज़र में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरा खुदा जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ वो क्या करता है जानता है, उसको पता है। आपको नहीं पता, आप राइज़ नहीं करते जा रहे, आप आए थे मुझे तसल्ली देने के लिए, आप मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिसके नतीजे में ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो मैं अपने आप को रास्तबाज़ तो नहीं ठहराता खसूसन खुदा के सामने, लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को परखता हूँ मुझे कोई ऐसा पाप नज़र नहीं आता जिसकी मुझे सज़ा मिल रही हो। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि कोई ऐसा गुनाह जो मैंने किया हो, कर रहा हूँ, मेरे अंदर हो, वो आपको दिखाई दे या ना दे, मेरे बुलाने वाले या मेरे खुदा को उसका इल्म है। क्यों? इसलिए कि वो ये काइलियत और ईमान के साथ ये दावा करता है, लेकिन वो यानी खुदा उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। 11वीं आयत में लिखा है, मेरा पांव उसके कदमों से, ये नहीं कि मैं बीमार हो गया तो मैं खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगा, ये नहीं कि मैंने ईमान रखना छोड़ दिया, नहीं। तुम्हारी राय, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मशवरा, तुम्हारी असेसमेंट वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं खुदा की निगाह में कहाँ खड़ा हूँ। तो वो दावा करते हैं, पर मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा और मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता, और मैं उसके लबों के हुक्मों से, हुक्म से हटा नहीं। यानी मेरे पे मुसीबत आई, समझ मुझे भी नहीं आ रही क्यों आई है। आपको जो समझ आई है मेरे दोस्तों आपने बता दी है, लेकिन मेरा दावा यह है कि मैं तो इस कदर दुख उठाने के बावजूद भी मेरे कदम उसके साथ लिपटे रहे, या मैं उसके साथ लिपटा रहा। जो हुक्म खुदा ने दिए उसके लबों से निकले हैं, यानी उसका कलाम, मैं पीछे नहीं हटा। अक्सर औकात इंसान जब खुदा से नाराज़ होता है या वो अपने हालात को, मसाइल को और उसके इसबाब को समझता नहीं है, तो उसका दिल उस खलूस और पाकदामनी से जो खुदा के साथ होनी चाहिए वो हट जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, यानी मैं मुसलसल खुदा की राह पर चलता रहा हूं, और जिस राह पर मैं चलता हूं वो जानता है मुझे। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। अब इस पस मंजर में वो ये कह रहा, लेकिन वो उस रस्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है, जब वो मुझे तालेगा। अब उसको थोड़ी सी समझ आई है ये क्या हो रहा है। जब वो मुझे तालेगा, ताना जो है ये टेस्टिंग, इसका मतलब है परखना। जब मुझे वो तालेगा, जब मुझे वो परख लेगा, जब वो मुझे जांच लेगा, जब वो मुझे इम्तहान में से गुजार लेगा, जब वो मुझे आजमा लेगा, परख लेगा, तो फिर वो डिक्लेयर करेगा, मेरा खुदा ही इस बात का ऐलान करेगा कि अगर अय्यूब चांदी की मानद है या अय्यूब सोने की मानद है तो इसमें कोई खोट और कोई मिलावट नहीं है, वो मेरा मुनसफ है, आप मेरे मुनसफ नहीं हैं। तो जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। अब खुदा जो है वो इंसानों को, खास तौर पर ईमानदारों को ताता है, یعنی ان کو سادہ الفاظ لفظ میں سمجھنے کے لیے اگر آپ یاد رکھ سکیں، جب وہ مجھے پرکھ لے گا، جب وہ مجھے ٹیسٹ کر لے گا، ٹھیک ہے، خدا اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کو پرکھتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ خدا کے کسی بھی شخص کو، خصوصاً ایماندار اور مقدس شخص کو، پرکھنے کے سات اسباب ہوتے ہیں۔ سات اسباب میں سے پہلا سبب ہوتا ہے ایماندار کو باطن میں روحانی طور پر پاک صاف کرنا۔ سونے چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے بھٹی میں یا کھٹالی میں، تو اس کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تاکہ اس میں سے کثافت دور کی جائے، اس کو خالص کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ تو ایک تو خدا انسانوں کو صاف کرتا ہے، اور اگر یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت آپ نکال لیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت، بہت ساری آیات ہم نہیں پڑھیں گے تاکہ ہم وقت بچائیں، خاص خاص آیات ہم پڑھیں گے۔ یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ سونا چاندی جو ہوتا ہے اس کو کٹھالی میں، جو کہ دھات کو پگھلانے کے لیے ایک پیالی ہوتی ہے، اور بھٹی، بھٹی بھی ایک ایسا آتش دان ہے جس میں دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، بھلے وہ سونا چاندی ہو، بھلے وہ لوہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا ہے دیکھ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، وہ تو دھات ہے۔ میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا، تو اس کا مطلب ہے، اور میری دعا ہے کہ آج کے کلام کی ہم سبوں کو سمجھ آئے، جب بھی کوئی ایماندار خاندان یا شخص یا کلیسیا مصیبت میں پڑتی ہے تو کم ایمان والے اپنے سر پر باہیں رکھ کر تو واویلا کرتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ خدا مصیبت لاتا ہے، آنے دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے تجھے صاف کیا، لیکن چاندی کی مانے نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں سے، اس کے آتش دان میں سے، اس آگ میں سے، مصیبت کی آگ میں، جس کا بزرگ پطرس اپنے خط میں، پہلے خط کے 4 باب میں ذکر کرتے ہیں کہ آئے بھائیو، مصیبت کی وہ آگ جو تم میں بھڑکی ہوئی ہے اسے انوکھی بات نہ سمجھنا۔ تمہارے اور بہن بھائی بھی اسی طرح سے پرکھے جاتے ہیں، مصیبت میں سے گزرتے ہیں۔ انسانی کمزوری یہ ہے کہ ہمارا بدن، ہماری عقل، ہمارا ذہن مصیبت نہیں چاہتا۔ خدا صاف کیسے کرتے ہیں؟ مصیبت کے ذریعے سے۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا، میں نے مصیبت کی کٹالی میں تجھے صاف کیا۔ اب کئی دفعہ مجھے اور آپ کو مصیبت میں خدا پڑھنے دیتا ہے تاکہ ہمیں صاف کرے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہائے شیطان، آج کل مجھے جینے نہیں دیتا، یہ ساری جو ہے کسی نے جادو کیا ہے، ہارے میرے ساتھ، خدا بھی میرے ساتھ نہیں ہے، یہ مصیبت میرے اوپر ہی کیوں آتی ہے؟ تو ہم اس زاویے سے اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو، اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی خدا پرست شخص جو سیدھی چال چلتا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری سے راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے، سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جس مصیبت میں پڑی ہوں یا پڑا ہوں، یہ مصیبت میرے گناہ کا نتیجہ ہے یا खुदा ही है जो मुझे मुसीबत की कटाली में से जो मुझे गुजार कर साफ कर रहा है। तो अगर खुदा किसी को साफ करे तो उसमें कोई बुराई है? अगर कोई ईमानदार प्योर होता जाए, खालस होता जाए, पाक से पाक तरीन होता जाए, कामल होता जाए तो उसमें कोई नुकसान है? तो क्या हम खुदा मुसीबत में डालकर हमें को खुश होता है? उससे तो घूम फिर कर मुझे और आपको फायदा है, खुदा साफ कर रहा है। लेकिन चूंकि कल ही खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि तुम रूहानी नहीं जिस्मानी हो, जब खुदा की मर्जी होगी तो मैं सुनाऊंगा उसका क्या मतलब है। हमारी मुश्किल ये है कि हम जिस्मानी भी हों तो हम अपने आप को रूहानी समझते हैं, हम आजमाइश में भी गुजरे तो हम उसकी रूट्स तलाश करने में नाकाम हैं। यहां खूबसूरत बात लिखी है, मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानन नहीं, मैंने मुसीबत की कटाली में तुझे साफ किया। तो अगर मुझे खुदा साफ करता है, आपको खुदा साफ करता है, हमारी फैमिली को खुदा साफ करता है, तो साफ होने के लिए अपने आप को खुदा के क्या करना चाहिए? स्पुर्द करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, हवाले करना चाहिए, कर साफ। छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को कभी कभी सर्दियों में कहना कि चलो तुझे नहलाना है, तो बच्चे कहते नहीं मैंने नहीं नहाना, क्यों सर्दी लगती है? तो माँ फिर भी नहलाती है। क्या बच्चे को इस गरज से नहलाती है कि इसको नहलाऊं तो इसको नमोनिया हो जाए? नहीं, साफ कर नहीं, हम बच्चे हैं ना। खुदा बहुत बड़ा है, उसके कामों को समझना, बाइबल बताती वो हमारे अदराक से परे हैं, वो समझ से बाला है। अय्यूब की समझ से बाला थे, उसके तीन दोस्तों की समझ से बाला थे, इतना बड़ा खुदा का खादम पौलुस रसूल उसकी समझ से बाला थे। उसने रोमियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए उसने कहा, वाह खुदा की हिकमत जो इंसानी अदराक से परे है, उसके फैसले दुरुस्त और रास्ते हैं, भले वो हमारी समझ में आए या ना आए। तो लिहाजा खुदा जब किसी को ताना चाहता है, ताता है, या उसको अपनी मुसीबत के आतशदान में या भट्टी में या खटोली में खुदा जब रखता है, तो मैंने सात मकासद आपको बताए, भी मैं आपको पहला बता रहा हूँ। पहला उसका मकसद ये है कि खुदा इंसान को साफ करता है। खुदा जो कितना साफ और पाक है, प्योर है, कि उसमें ज़रा भर भी तारीकी, वो नूर है। तो अगर वो हमारे अंदर से कोई ना कोई तारीकी दूर करता है और हमें मुसीबत में पड़ने देता है, लिखा है ना ये जो बीज बोने वाले की तमसील है, वो कहाँ लिखी हुई है? अंजील में, मत्ती की अंजील के 13वें बाब में, और उस तमसील के साथ ही उसकी तफसीर भी लिखी है ना, तो वहाँ लिखा है कि जब कलाम के सबब से क्या आती है? मुसीबत आती है। ज़मीन का ये ज़िक्र है जो पथरीली ज़मीन में जल्द बीज उगाता है, चंद रोज़ा है, जब कलाम के सबब से मुसीबत आती है मुरझा जाता है, सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, चंद रोज़ा है। तो कलाम के सबब से भी मुसीबत आती है जब आप खुदा के कलाम पर चलना चाहें। जहाँ जहाँ भी दुनिया में मज़हब के नाम पर अजार आसानी हुई है, भले मसीहों की हुई है, दीगर अकवाम की, हमारा तो वास्ता मसीहों के साथ है, वो किस सबब से है? कलाम के सबब से, इल्मे अलाहियात की तालीमात के सबब से। तसलीस हो सकती है, मसीह का कफारा हो सकता है, मसीह की अलूहियत हो सकती है, बहुत सारी जो वजूहात हो सकती हैं, वो कलाम के सबब से। कलाम की कई सच्चाइयाँ अगर हम बाइबल में से निकाल दें तो सारी दुनिया के मज़हब एक हो जाएंगे, क्या ख्याल है? तफरीक कौन सी चीज़ पैदा करती है? कलाम की सच्चाई है जो लतीफ़ को कसीफ़ से क्या करती है? जुदा करती है। आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। अगर हमें कोई कहे कि मसीह खुदा का बेटा नहीं है, तो हम कहेंगे कि जैसे मर्द और औरत के मिलाप से बेटा पैदा हुआ है, यीशु मसीह वैसे बेटा नहीं है, हम मानते हैं। अगर वो कहें कि नहीं वो खुदा का रूहानी बेटा भी नहीं है, तो फिर हम कहेंगे हम नहीं मानते। तो फिर कलाम के सबब से क्या आएगी? मुसीबत आएगी, शिरक, कुफर, आप काफर। तो इसलिए खुदा का शुक्र है, इसलिए तो इस कलाम पर चलना मुश्किल है। और इसी कलाम पर चलने और इसकी पैरवी करने ही की हमारी बुलाहट है, हमने इसके मुताबिक चलना है। तो लिहाजा देख, मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मां नहीं, मैंने मुसीबत की कुटाली में तुझे साफ किया। और आगे जरा वजह पढ़ लें, ये हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। मैंने अपनी खातर, अपनी ही खातर ये किया, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर। वजह क्या है? मैंने तुझे मुसीबत में पढ़ने दिया क्योंकि तेरी वजह से मेरी तोहीन हो रही है, तेरे चाल चलन की वजह से, तेरे किरदार की वजह से, तेरी बुरी गवाही की वजह से, खुशखबरी के माफक ना चलने की वजह से, महज नामी मसीही होने की वजह से, गले में क्रास पहनी हुई है और वो ऐसे गंदे और हिरस से साथ काम किए जा रहे हैं, तो तोहीन और तकफीर और बेइज्जती किसकी हो रही है? जिसके हम नाम से कहलाते हैं। कोई भी पूछे आप कौन है, क्या मजहब है, तो हमने क्या बताना है? हम क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं। तो अगर हम जिसके नाम से कहलाते, देखिए हमारे माशरे में कई खानदान इतने गयूर होते हैं कि उनके घर में कोई ऐसा वाक्या हो जाए तो वो समझते हैं कि हमारे फलां बच्चे ने या खानदान के किसी फर्द ने खानदान की क्या कटवा दी है, नाक कटवा दी है। और कभी कभी लोग इस तरह की हालत में, गांव में कोई वाकया होता है तो वो गांव छोड़कर चले जाते थे। क्यों? अब हम लोगों को फेस उनका सामना नहीं कर सकते, हमारी इतनी बेइज्जती हुई है इस वाकया की वजह से, इतनी हुई है कि हम नहीं रह सकते। कई दफा लोग मुल्क छोड़ देते, सूबा छोड़ देते, शहर छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे तोहीन, तहकीर, बेइज्जती, बदनामी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं और आप दावेदार हों कि हम मसीह के पैरोकार हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, वो हमारा उस्ताद है और हम उसके शागिर्द हैं, जब हम दुनिया में या पाकिस्तान में हम ये दावा करने वाले हों, और फिर काम हमारे ऐसे हों जिससे खुदा की तकफीर हो रही है। याद है आपको अय्यूब की बीवी ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया ना, कब तक तू अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा, कहां है तेरा खुदा? तेरी ये जो बुरी हालत है, अगर खुदा तुझसे राजी है तो तेरी ये हालत होती? छोड़ ऐसे खुदा को, उसकी तकफीर कर और जान दे दे और छूट जा इस दुख से। इस मर्द खुदा का जवाब क्या था? तू तो नादान और तो जैसी बातें करती है, खुदा से इज्जत भी हमने पाई है, बरकत भी पाई है, शोहरत भी पाई है, दौलत भी खुदा ने दी है, इज्जत सब कुछ खुदा ने दिया है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? ये है तू नदान औरतों सी बातें करती। तो यहां जो लिखा है कि मैंने मुसीबत की कटाली में तुझे साफ किया और मैंने अपनी खातर, और दो दफा लिखा, जहां भी बाइबल में कोई बात दो दफा लिखी जाए या दुनियावी लिटरेचर में, तो उसका मतलब होता है एम्फसिस, वो बात अहम है, जोर दिया जा रहा है। मैंने अपनी खातर, हां अपनी ही खातर ये किया, यानी मुसीबत की कटाली में तुझे साफ किया अपनी खातर। वजह, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर, मैं तो अपनी शौकत दूसरे को, यानी जो शौकत, इज्जत, जलाल, मर्तबा खुदा के लिए है और उसी को जेब देता है, वो हमारी करनियों की वजह से शैतान ले जाए तो फिर खुदा का दिल किस कदर दुखेगा। इसलिए बुजुर्ग पतरस रसूल ने यह कहा कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, आए भाइयों, मुसीबत की ये आग जो तुम में भड़की हुई है, इसे कोई अनोखी बात ना समझना। जब मसीह होने की खातर सताए जाओ तो खुश हो इस बात के लिए। गुनाह करके मुक्के मत खाओ, गुनाह करके अपनी नाक मत कटवाओ, गुनाह करके आंसू मत बहाओ। कलाम पर चलने की खातर अगर सताए जाओ, दुख और मुसीबत और आजमाइश का सामना हो तो खुशी मनाओ, इसलिए कि तुम साफ किए जा रहे हो। जितना ज़्यादा तुम साफ किए जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे बदनों से खुदा का और खुदा के जलाल का मतलब है खुदा की इज्जत। दुआ तो हम करते हैं ना, करवाते भी हैं कि हमारे लिए दुआ करें, खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बड़ा एक मशहूर वाक्या है, एक दफ़ा एक पास्टर के पास कोई शख्स आया तो कहने लगा, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें। उसने कहा, भी बताओ क्या दुआ करें। मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे बरकत दे। उसने कहा, आंखें बंद करो। उसने सर पर हाथ रख कर उसको कहा, खुदावन पा खुदा जितनी भी मुसीबतें इस आदमी पर नाजल कर सकता है नाजल कर यसु मसीह के नाम में। वो बंदा कहने लगा, मैंने तो आपको कहा था बरकत की, तो आपने ये दुआ क्या कर दी। क्योंकि पास्टर को तो पता था कि प्रोसेस क्या है, रास्ता क्या है। तो अगला शख्स जो था वो समझ ना पाया। और मेरा ख्याल है कि उसी शख्स में हम भी अपने आप को देखते हैं कि जब भी मुसीबत आती है हम समझते हैं ये कौन सी बरकत है भाई। लेकिन अगर आज हम ये समझ जाएं, हर मुसीबत नहीं, जिसकी इजाज़त खुदा देता है और वो हम पर आए और उससे हम प्योरीफाई हो जाएं, खालस हो जाएं, पाक हो जाएं, कामलियत में एक कदम आगे बढ़ जाएं, रति भर भी नाराज़गी हमारे अंदर से या तारीकी अंदर से दूर कर दी जाए, तो हमें कितना फ़ायदा है। ना सिर्फ हमें फ़ायदा है, कलीसिया को फ़ायदा है, खुदा की बादशाहत को फ़ायदा है, यहाँ तक मैं कहूँगा खुदा को फ़ायदा, क्योंकि उसका उसकी तकफीर होनी बंद हो जाएगी और उसके मुकाबले में हमारी क्या होगी, खुदा की क्या होगी, इज्जत होगी। तो इसलिए मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, ये अपने आप को परखने का और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाने का बेहतरीन मौका होता है। इंसान अपने उठने बैठने पर गौर करे, अपने बातन को टटोले, अपने इरादों, अपनी नीयतों, अपने मंसूबों को और अपने बातन की हालत को देखे। मेरी और आपकी कमज़ोरी ये है, हमारी उंगली उठती है दूसरे पर कि वो ऐसा है, उनका ख़ानदान ऐसा है, वो शख्स ऐसा है, वो शख्स ऐसा है। अच्छा हो कि हम एक अच्छा रूहानी असूल देखें, वो जैसा भी है वो जाने, खुदा जाने मैं कैसी हूँ अंदर से, ऊपर से नहीं, क्योंकि हम बरूपीय भी हैं ना, रयाकार भी हैं। अंदर से मैं कैसी हूँ, क्या मैं अय्यूब की तरह दावा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ वो जानता है, वो मेरी ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है, मेरा उठना बैठना जानता है, पोशीदगी में मैं खुदा के बारे में या किसी के बारे में क्या गुफ्तगू करता है, नोस मैं क्या इरादे और मनसूबे बनाता हूँ, क्या मेरी राय जनी है दूसरों के बारे में अय्यूब के दोस्तों की तरह, वो जानता है। ये उसका दावा है। और अगर हम भी इस तरह का दावा कर सकें कि जिस रास्ते पे मैं चलता हूं मेरा मुनसिफ हो, वो इस बात का फैसला करेगा कि हद तक मेरे अंदर नाराजगी है, कहां से शुरू हुई, कहां तक है, ये फैसला वो करेगा। मुझे जहां तक पता है मेरे कदम, अय्यूब नबी फरमाते हैं, मेरे कदम उससे नहीं हटे, उसके लबों से निकले हुए अहकामात की मैंने कदर की है, मैंने उन पर अमल किया है, मैं बरगश्ता नहीं हुआ, मैं बरगश्ता नहीं, मुझे ये पता है कि ऐसे लगता है कोई आजमाइश है, जब वो मुझे तालेगा परख लेगा तो फिर इस मुसीबत की भट्टी में जिसमें जैसे सोने और चांदी को परखा जाता है, तो फिर मैं प्योर होकर मैं सोने की मानन निकल आऊँगा। इसके लिए रूहानी बलूगत चाहिए, मैच्योरिटी। जो रूहानी तौर पर बालग लोग होते हैं वो अपने हालात में खुदा की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मैं इस वादी में से गुज़रा या गुज़रना पड़ा या गुज़ारा गया, गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, क्या मकसद हो सकता है खुदा का, क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। और अक्सर याद रखिए जो बात अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, अक्सर जब आप दुख में से मुसीबत में से गुज़रेंगे तो आप रिफ़्रेश होकर रूहानी तरक्की करके पहले से ज़्यादा कुव्वत और मसा से रूहानी जोश से भर कर एक लेवल ऊपर आकर खुदा की पैरवी करेंगे। उसके लिए याकूब के आम खत की 12वीं आयत में पढ़ूंगा, ज़बानी आप मत निकालिए, लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा यानी आजमाइश में कामयाब हो गया, पास हो गया, खुदा ने इम्तिहान में से उसको गुजारा, वो तो ब्लेस्ड है, वो तो मुबारक है। मुबारक है वो शख्स, याकूब का आम खत पहला बाब 12वीं आयत, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा, पास हो गया उस इम्तहान में, तो आगे लिखा है वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। खुदा ऐसी थोड़ी मुसीबत में डाल रहा है, आगे कुछ देगा जो पहले नहीं है उससे बढ़कर देगा, या जो पहले है उसमें इजाफा करेगा, तो फिर घबराने की जरूरत है। अपने सुकून को बरकरार रखने के लिए, अपनी खुशी को कायम रखने के लिए, अपनी गवाही को दुरुस्त रखने के लिए, अपनी रोया पर चलते रहने के लिए, इस रुख से भी हमें दुखों और आजमाइशों को देखना है कि क्या खुदा ही तो नहीं है जो मुझे साफ कर रहा है, वो मुझे ता रहा है। फिर हम ये कहने के लायक होंगे, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की तरह निकल आऊँगा। ये उम्मीद का पैगाम है, ईमान का इजहार है, मायूसी का नहीं है। दूसरी बात है तंबीह करना। तंबीह के साथ सज़ा जुड़ी हुई है। बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। बच्चा जब गलती करता है तो ज़बानी तौर पर उसको मना किया जाता है, खबरदार ये काम ना करें। ये तंबीह करने का एक तरीका है। कभी कभी डांट कर कहा जाता है, कहीं कहीं माँ की या बाप का सर जो देखना होता है ना, घूर कर देखना, वो ही काफ़ी है। कभी कभी बच्चे को धमकी जाती है, अगर तू बाज ना आए तो फिर मैं तुम्हें रसात ये करूँगा। और फिर कभी कभी तमाचा या छड़ी, पहले मुंह से है, फिर सजा का एक पहलू है कि जब वो सारे तरीके कारगर साबित नहीं हुए और मुतलका शख्स सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर खुदा सजा देकर, जब शायरबानी में शरीक होने की तालीम दी गई करंथस की कलीसिया को, तो लिखा गया कि जो कोई नामनासब तौर पर खुदावन के खून और बदन में शरीक होता है वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। अगर हम अपने आप को परखते तो सजा, इसी सबाब से बतेरे बीमार हैं और कमज़ोर हैं, को मर भी गए हैं। और आगे लिखा है, खुदा तुम्हें सजा देकर तंबीह करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम। तो पहला मकसद क्या हुआ फिर, या तरीका ता लेने का क्या हुआ, मुसीबत। फिर दूसरा है तंबीह करना, सजा دے کر سکھانا، کاٹ چھانٹ کرنا تاکہ اور زیادہ پھل آئے، ریفائن ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، عادات درست ہو جائیں۔ تیسری بات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اگر ہم دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو ذہن میں لائیں تو ایک بچہ فرض کریے ساتویں جماعت میں پڑھتا ہے، سارا سال پڑھا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آٹھویں جماعت میں جانے کے لائق ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کون سا امتحان؟ سالانہ، سالانہ اس کا امتحان ہوگا، اس امتحان میں کئیوں نے فیل ہو جانا، انہیں کلاس رپیٹ کرنی۔ تو جنہوں نے امتحان میں اچھی کارکردگی دکھا کے پاس ہونا ہے تو وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ خدا کے سکول میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ خدا ہمیں صاف کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ترقی دے، پروموٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ لفظ بائبل کا ایک استعمال کر سکتے ہیں، سرفرازی، اقبال مندی، ٹھیک ہے، اگلی سٹیج پر لے جانا کسی خدا کے بندے اور بندی کو، ترقی کرنا، اس کی سرفراز کرنا۔ تو اگر خدا ایسے حالات میں، مصیبت میں ڈال کر ہمیں، اور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، کیا کرتا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، اس امتحان میں یہ پاس ہوتا ہے، نہیں ہوتا، مقبول ٹھہرتا ہے، نہیں رہتا، کیونکہ خدا تو ہمیں گرانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تھوڑی خدا ہمیں امتحان میں سے گزارا ہے، وہ کائے کے لیے گزارا ہے، ہمیں آگے برکت دینے کے لیے، کیا اس لائق ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ آفسز میں آپ دیکھ لو، لوگ سال ہر سال تک کام کرتے ہیں، پھر جا کر ان کی پروموشن ہوتی ہے، کوئی مینیجر بن جاتا ہے، کوئی اسسٹنٹ مینیجر بن جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے، اس طریقے کی پروموشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور انسانوں کی ترقی ہوتی ہے۔ تو خدا تو چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم بڑھتے جائیں۔ اور میں تو اس سال پہلی دفعہ نئے سال پہ کلام نہیں سنا سکا، لیکن میں آج دہراتا ہوں، ہر آنے والے سال میں بھلے چند قدم ہی ہم خداوند کی نزدیکی اور قربت حاصل کریں، ہمیں بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 20 سال پہلے جو ہمارا روحانی قد تھا یا معیار تھا، 20 سال پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ نیچرل جو طبعی طور پر ایک بچہ سال کے بعد اس کا قد نہیں بڑھتا، ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ پچھلے سال تو اتنا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، بڑی ہو گئی، بچوں کو غیر بھی مشاہدہ کر کے تو اظہار خیال کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ترقی سب پر ظاہر ہونی چاہیے، جو کچھ پچھلے سال نہ کر سکے، جو باتیں رہ گئیں، کمزور پائے گئے، روحانی ترقی نہ کر سکے، ادھر کدھر روحانی جمود رہا ہماری زندگیوں میں، تو اس سال ہمیں وہ گوارا نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں پرموٹ ہونا ہے، ہمیں سرفراز ہونا ہے۔ یشوع سے کیوں کہا گیا؟ شریعت کی یہ کتاب، پہلا باب آٹھویں آئے، شریعت کی یہ کتاب تیری نظروں سے وہ جلنا ہو، جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے تو خوب کامیاب ہوگا، خدا تجھے سرفراز کرے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ خدا ہمیں سرفراز کرے، ہماری توفیق کو بڑھائے، ہمارے مسا کو بڑھائے، ہماری روحانی سمجھ کو بڑھائے، ہمارے روحانی اختیار کو بڑھائے، ٹھیک ہے، ہماری خدمت کو بڑھائے، کون نہیں چاہتا بھائی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ خدا مصیبت میں، امتحان میں سے گزارے گا، پھر کیا کرے گا؟ پرموٹ کرے گا، سرفراز کرے گا۔ اور پھر چوتھی بات، روحانی بھلائی۔ کئی چیزوں میں جسمانی طور پر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے روحانی ہے۔ آپ کو یاد ہے فلپے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے کہا، جتنی باتیں یا چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نقصان دہ سمجھتا ہوں، اور یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ تو کئی دفعہ دنیاوی طور پر، مالی طور پر کئی ایسے نقصانات ہمارے ہو جاتے ہیں، और हाँ हम हमें फिक्र लाहक हो जाती है, खुदा से हम गिला और शिकवा करने लगते हैं, लेकिन उनमें हमारी भलाई होती है, हमारी भलाई होती है, हमारा फ़ायदा होता है। हम अपने नुक्ता नगाह से अपना फ़ायदा देखते हैं, खुदा अपने नुक्ता नगाह से मेरे लिए और आपके लिए क्या फ़ायदा मंद। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी अंकल मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या दुआ करूँ। कहने लगी वो अमरीका में मेरी मंगनी हुई है, वो शादी को डेट नहीं देते हैं और वो ऐसे टाल टूल रहे हैं, दुआ करें मेरी शादी हो जाए उसी लड़के के साथ। होते मैंने कहा मैंने नहीं ये दुआ करनी। थोड़ी सी वो फिक्रमंद हुई। मैंने कहा मुझे लगता है कि तेरी शादी उधर ना हो तो तेरे लिए भला होगा, लेकिन उसको क्रेज था अमरीका जाने का। मैंने कहा बेटा दुनियावी नुक्ता नगाह से देखें, तेरी शादी हो जाए तो अमरीका चली जाए तो क्या हर्ज है इसमें दुनियावी तौर पर, लेकिन अगर ये रुकावटें पड़ रही हैं, हो सकता है खुदा अपनी मोहब्बत में तुझे बचा रहा हो इस शख्स से और इस ख़ानदान से। मैंने ये दुआ नहीं करनी, दुआ ज़रूर करूँगा, ये दुआ करूँगा कि खुदावन अगर ये तेरी मर्ज़ी में है कि उस लड़के के साथ इसकी शादी हो तो सारी रुकावटों को दूर कर, और अगर रुकावटें पड़ रही हैं और इनको तो पता नहीं है अमरीका का, ये जो जाएँगे तो उनको पता चलेगा ना, तो अगर ये तेरी मर्ज़ी है कि इसका इसमें भला है कि उस ख़ानदान या उस शख्स के साथ बढ़े, वो पहले से शादी हो, शराबी कबाबी हो, ये तो उधर जाके पता चलेगा। सिर्फ एक मिसाल मैंने आपको बताई है समझाने के लिए। बाज़ औक़ात हम अपनी तमाम सलाहियतें हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं वो हो जाए, कभी हमने देखा कि इसमें मेरी भलाई है या नहीं है। अगर हमने देखा भी तो अपनी भलाई को जिस हद तक हम पहचान सकते हैं और खुदा पहचान सकता है वो बराबर है। देखिए एक बच्चा है वो सांप को पकड़ता है, जिंदा सांप है वो उसको पकड़ता है, एक बच्चा उसको क्या पता है। एक बच्चा मोमबत्ती के शोले को पकड़ता है, पकड़ना चाहता है, उसको क्या पता है मेरा आज जल्दी। बड़ों को पता है वो रोकते हैं नहीं, बच्चा रोता है पता नहीं कौन सी बरकत मेरे से छीन रहे हैं। तो चूंकि हम रूहानी नहीं है ना, तो हमारी सोच जिस्मानी है, इसलिए हम चीजों का दराक, उनकी वैल्यूएशन, उनके अंदाजे लगाना, उनको परखना, उसमें हम गलती कर बैठते हैं। खुदा से गलती नहीं होती है। खुदा जब हमें मुख्तलिफ हालात और वादियों में से गुजारता है या गुजारेगा, और खसूसन मुसीबत की कटाली में गुजारेगा या अयूब की तरह जब हमें वो ताएगा, तो उसमें से एक मकसद होगा कि वो हमारा भला करे। मैं आयात अभी आयात में नहीं जा रहा, वक्त बचाने की खातर सिर्फ समझ आइए कि सब चीज़ें मिल मिला कर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करते। किसी का बच्चा पेट में ज़ाया हो जाए वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या भलाई है, खुदा को पता है, खुदा को पता है। इसलिए सरेंडर करना, खुदा के हवाले अपने आप को करना, ताबिया कर देना कि खुदा मैं नहीं जानती ये क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है, तो भी मैं इतना दना इतना दूर अंदेश नहीं हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा। अयूब इतना बड़ा नबी वो ना समझ पाया तो हम जो जिस्मानी हैं इतने रूहानी भी नहीं, हम कहाँ जा समझ पाएंगे। इतना बड़ा खुदा का खादम जिसे मसीह का कायम मकाम कहते हैं बुजुर्ग पौलुस रसूल, वो बहुत सारी बातों में खुदा को ना समझ पाया और उसकी उसके बर्ताव को उसके कामों को ना समझ पाया, तो हम कैसे इतनी आसानी से समझ लेंगे। इंसान की कमज़ोरी ये है कि वो पहले समझना चाहता है तो फिर वो अपने आप को ताबिया करना चाहता है या बात मानना चाहता है। हकीकी फरमानबरदारी ये है कि अगर हम खुदा के कामों को नहीं भी समझते तो खुद अय्यूब की तरह कि मैं नहीं समझता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे यूं लगता है कि वो मुझे आजमा रहा है, वो मुझे परख रहा है, जब मुझे वो तालेगा तो मैं जो तो अपने दिल का पता ना, मुझे अपने ज़मीर का, अपने गरेबान का, अपनी लाइफ का पता है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की तरह निकल आऊँगा, खुदा से शाबाश हासिल कर सकूँगा। ये मेरे दोस्तों के भी मुंह बंद हो जाएंगे जो गलत अंदाजे लगा के तबसरे कर रहे थे। पांचवी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, परखना, इम्तहान में से गुजरना, इम्तहान करना किसी का कि किसी कोई शख्स खुदा के साथ जो ज़िंदगी बसर कर रहा है किस लेवल तक खड़ा हुआ है, किस मकाम तक है, उसमें खुदा इंसान को परखता है। दाऊद बादशाह नबी भी थे, उन्होंने कहा खुदा मुझे जांच और मुझे परख, देख में मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं है। सुलेमान बादशाह ने कहा तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। कई दफ़ा मैं अपनी निगाह में अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस बात में ठीक हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐसा करने से मैं रास्तबाज थोड़ी ठहरता हूँ, मेरा परखने वाला कौन है? असल जजमेंट तो वो है जब वो जाहिर करता है इंसानों का हाल उनके ऊपर, तो फिर लोग रियलाइज़ करते हैं, कन्विक्शन होती है, कायल लोग होते हैं और फिर वो इकरार करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी मीटिंग्स खुद भी करवाई हैं और मैंने देखा है कि लोग जो अपना छोटा सा गुनाह भी नहीं मानते थे वो पूरी कलीसिया के सामने धाड़े मार मार कर रोए और उन्होंने सबके सामने गवाही दी है, अपने पोशीदा गुनाहों को इकरार किया। कब? जब खुदा का रूह किसी को अपनी गिरफ्त में लेकर मलामत करता है, कन्विक्ट करता है, कायल करता है और खुदा उसका चेहरा, उसकी हालत बातनी हो या जहरी हो, पोशीदा हो, उस पर जहर करता है, तो रूह की कायलियत के सामने इंसान जो है वो खुल्लम खुल्ला बरमिला उसका इकरार और इजहार करते हैं। सो पांचवी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि खुदा परखता है, खुदा इंसान को इम्तहान में से गुजारता है, देखे कि ये मेरे साथ जो चलता है, पैरवी करता है, खिदमत करता है, ये किस मकाम पर खड़ा है, और अगर ये इस लायक है, इसके मकाम को, इसके रूहानी कद को बढ़ाया जाए, इसके इख्तियार को बढ़ाया जाए तो उसमें हमारा फ़ायदा है। अगर कमी है तब भी उस इम्तहान में हम महसूस करेंगे, तौबा करेंगे, माफ़ी के तलबगार होंगे। उसके बाद छठी बात है तस्दीक। तस्दीक से मुराद क्या है? तस्दीक से मुराद ये है कि खुदा ने शैतान को भी हराना है, खुदा ने शैतान को भी हराना है साबित करके कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी मेरे साथ वफादार है। अय्यूब की जो सारी जो स्टोरी है उसका जो उसकी बुनियाद पहले बाब में लिखी हुई है, और वो बुनियाद क्या है कि मामला खुदा और शैतान के दरमियान था, तो अय्यूब बेचारा बुजुर्ग बीच में पिस रहा था और उसके तीन दोस्त भी बेचारे गलतियां कर रहे थे। असल बात क्या थी? असल बात यह है कि खुदा ने फख्र किया अपने बंदा पर, शैतान के सामने, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा जो मुझसे डरता और बदी से दूर है? उसने कहा जी देखा है, ज़रूर देखा है, लेकिन आपसे डरतर बदी से दूर रहता है, ऐसी थोड़ी रहा, आपने इतनी बरकत उसको दे रखी है, इतनी बरकत देख रही, अपने इलाके का बड़ा सेठ है, बड़ा शेख है, बड़ा अमीर सरदार है, तो आप थोड़ा सा इसको नुकसान देंगे, यही आपके मुंह पे आपको बुरा भला लगेगा, यही था ना। अब अय्यूब को पता था ये सब कुछ हो रहा है? उसको पता ही नहीं, ना उसके दोस्तों को पता है। बात है खुदा और शैतान के दरमियान, और एक खुदा प्रस्त मर्द खुदा बीच में कुचला जा रहा है और वो हैरान है मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। उस वक्त अय्यूब की किताब कौन सी लिखी हुई थी? आज हमें भी ना पता होता कि अगर ये किताब लिखी हुई हमारे पास ना थी, हमें इस स्टोरी का क्या पता होता। तो वो फख्र कर रहा है और खुदा साबित करना चाहता है, तस्दीक करना चाहता है इस बात की, और शैतान को मनवाना चाहता है कि देख। और फिर वो सारी आजमाइश शुरू होती है खुदा की इजाजत से, और फिर हिस्टोरिकल बात कह दी ना अय्यूब ने, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक। तो इब्लीस के मुंह पे तमाचा पड़ा, साबित हो गया कि अय्यूब पैसे के लालच में भेड़ बकरियों के ऊँटों और गधों के लालच में वो खुदा की पैरवी नहीं करता, वो खुदा की इज्जत करता, वो खुदा से डरता है। जो उसने अपनी तलखी में बातें की हैं ना, वो तो अगले जो बाद के अबवाब हैं उसमें जाकर उसने किए हैं, जब उसकी आजमाइश क्या हो गई है, तवील हो गई है, तौलत इख्तियार करी, लंबी हो गई है, तो अपनी तलखी में फिर वो बोला। इब्तदाई चैप्टर आप देखें तो उसमें अपनी ज़बान से उसने खुदा पर जुल्म करने का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसको क्या कहा, मुबारक कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला था, नंगा ही मैं चला जाऊँगा, खुदा ने ये सब कुछ दिया था, उसी का दिया हुआ तो उसने ले लिया, कोई हर्ज की बात नहीं, ये उसका कहना। तो खुदा कभी कभी आपके बारे में लोग जो जो भी राय रखेंगे ना, और रखते हैं लोग, कभी कभी खुदा आपको मुसीबत में, आजमाइश में, इम्तहान में से गुजार कर इस बात पर मोहर करेगा कि आप उसकी हैं और वो आपका है, ये तस्दीक करेगा। आज हमारा दिल खुशी से भर जाता है जब हम अय्यूब की सारी आजमाइश और कहानी का अंजाम देखते हैं। पहले से ज़्यादा सरफराज किया, दुगनी बरकत दी, जब आजमाइश में से मकबूल ठहरा, पास हो गया, तो इसलिए अगर शैतान जो दिन रात भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता खुदा के हजूर, या इंसान उस शख्स के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं, शकूक रखते हैं, तो अगर खुदा तस्दीक करता है, वेरीफाई करता है कि ये मेरा है, बड़े कीमती अल्फाज लिखे हैं, तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा, मेरा बंदा अय्यूब, यशायाह के नबी के सहीफे में याकूब को मेरा बंदा, ठीक है, तो अगर खुदा कंफर्म करने के लिए, अपने लिए नहीं, खुदा को तो पता है, दूसरों के लिए और खसूसन शैतान के सामने डिक्लेयर करने के लिए कि मैंने इसको इम्तहान में से गुजार दिया, ये देख ये पास है, ये कामयाब है, इसने मेरी तोहीन नहीं किया, ये कलाम से हटा नहीं है, ईमान से हटा नहीं है, ये पहले की तरह मेरी राहों पर चलता रहा है, क्या हक तुझे पहुंचता है इस पर इल्ज़ाम लगाने का, तो शैतान फिर दुम दबा कर भागे कि नहीं भाई, इस आदमी का पीछा छोड़ो, ये खुदा से नहीं हटता, इसके कदम खुदा के साथ लगे हुए हैं, तो इससे हमारा भी फ़ायदा, हमारी रूहानी तरक्की, ऊपर से खुदा का जलाल। और सातवीं बात है इस्लाह, इस्लाह। अब मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ये दावा कर सके कि मुझे इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें इस्लाह की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि हम पहले से कामल हो चुके हैं। अगर तो जैसे हमारा बुलाने वाला पाक है वैसे हमने उन्हें पाक, अगर तो हमने मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक पहुंचना है, और अगर जो लिखा है कि कामल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, यानी हमें कोई कमी ना रह जाए, कमाल तक पहुँचें, परफेक्शन तक पहुँचें, हमसे कोई छोटा बड़ा गुनाह हो ही ना, ना ख्यालात में हो, ना बातन में हो, ना जाहिर में हो, तो हमें इस्लाह की ज़रूरत है। इस्लाह के लिए यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में जो अंगूर के हकीकी दरख्त की तमसील बताई है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता तो खुदा उसे काट डालता है, जो अच्छा फल लाता लेकिन उसका फल थोड़ा है, क्योंकि मेरे बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर होता है, तुम बहुत सा फल लाओ, फल वो लाता है, ईमानदार है, मुकद्दस है, खुदा का चुना हुआ है, लहू से धुला हुआ है, पाकर उसे मामूर है, बरगजिदा है, सब कुछ है, फलदार भी है, लेकिन फल थोड़ा है, उसको क्या करता है, दुनिया में जहाँ जहाँ अंगूर पैदा होता है
वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हर साल अंगूर की बेल की काट छांट ना की जाए तो अगले साल वो पहले जैसा फल नहीं लाता है। उसकी रिक्वायरमेंट है हर साल उसकी काट छांट, जितना काट छांट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर उतना ज़्यादा फ्लरिश होगा। तो ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ भी खुदा इस्लाह के लिए कि हम बेहतर हो जाएं, हमारी कमियां वो गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेते हैं वो मज़ीद हमें उलझा ना सकें, वो चीज़ें पुरकशिश जो हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं, भले इंसान हो, भले मंसूबे हों, भले पैसा हो, भले किसी की सूरत हो, भले और कुछ, जो चीज़ हमें अपनी तरफ खींच लेती है, दुनिया की रविश हो, उससे हटाने के लिए कि नहीं नहीं तू मेरा है, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा रास्ता नहीं है, ये तुझे जेब नहीं देता है, खबरदार तूने ऐसा किया, मैं तुझे कोड़ों से दुरुस्त करूँगा, मैं तुझे मुसीबत की डाली में डालकर साफ करूँगा, बास आ इस बात से, क्योंकि हम लवारस भी नहीं हैं, हम आवारा भी नहीं हैं और हम हरामजादे भी नहीं हैं, हम खुदा के बेटे हैं और हमारी बाप की इज्जत हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम खुदा की मलकियत है, उसकी जायदाद है, हम वो लोग हैं जिनके नाम किताब हयात में लिखे आसमानी शहरी, हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, खुदा के साथ बादशाहत करनी है। तो खुदा हमें तैयार करता है, प्योरीफाई करता है, खालिस करता है, इस्लाह करता है। सो अय्यूब नबी का ये दावा, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है, जब वो मुझे तालेगा, मुझे वो परख रहा है, मुझे वो साफ कर रहा है, मुझे वो इम्तहान में से गुजार रहा है, मेरी वो इस्लाह कर रहा है, मेरी रूहानी तरक्की होनी है, मुझे तंबीह कर रहा है, जो कुछ हो रहा है मेरी, मुझे लगता है मेरी भलाई के लिए ही होएगा, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊँगा। आइए आज अपने हालात में हम अपने आप को देखें, किस दुख में से मैं गुजर रही हूँ, गुजर रहा हूँ, आया ये मेरे किसी गलती नाफरमानी पाकरु को रंजीदा करने के नतीजे में है, ये अबलीस का कोई हमला है मेरे ऊपर, अबलीस मुझे आजमा रहा है, या अपनी मर्जी में, सॉवरेनिटी में, अपनी मर्जी में, अपनी हिकमत, अपनी दूरंदेशी, अपनी कामलियत की बुनियाद पर खुदा है जो मुझे साफ कर रहा है, तंबीह कर रहा है, तरक्की देने, सरफराजी देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहा है, मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे परख रहा है, मेरा इम्तहान कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि तू जिस जगह पर है ठीक है, और वो मेरी इस्लाह तो नहीं कर रहा है, मैं काट छांट से बगावत ना करूं, सरकशी ना करूं, बल्कि काट छांट होने दूं। आए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं। थोड़ा सा इस वक्त साल के शुरू में अपनी शख्सी हालत, ख़ानदानी हालत, चर्च की हालत पर हम गौर करें। गुनाह करके मुक्के ना खाएं, औरों के काम में मुदाखलत करके नुकसान ना खुद उठाएं ना दूसरों को पहुंचाएं। शैतान को अगर मौका दिया है तो खुदा को बुरा भला ना कहें कि खुदा कहाँ था। अगर खुदा हमें परख रहा है तो शैतान को उसका जिम्मेदार ना ठहराएं। अगर तलखी में कुछ बोलते रहे हैं जिसके बारे में आखिर में अय्यूब ने कहा था, जो कुछ मैं ना समझा वही मैंने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है क्योंकि मैंने अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली जो नहीं निकालनी चाहिए थी, इसलिए मैं खाक और राख पर तौबा करता हूँ। लिहाजा खुदा के साथ आपने बात करनी हो, खुदा के साथ आपने अपने मामला दुरुस्त करने हो दोनों सूरतों में, इस वक्त हमने दुआ करनी है ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए जिनको इस बात की ज़रूरत। अगर आप ताए जा रहे हैं और आपको समझ आए कि खुदावन ने मुझे इसमें से गुजारा है, तो गर्दन कशी ना करें, सरेंडर करें, कहें खुदावन तेरा शुक्र तू मेरा, मैं कीमती हूँ तेरे लिए, मैं तेरा बर्तन हूँ, इसलिए तो तू मुझे साफ कर रहा है। पहले मैं नहीं समझती थी, मैं समझता हूँ और मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। आप दुखों में से गुजार कर इंसान को कामल करते, मैं तो कामल होना चाहता हूँ, आप मुझे कामल कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं खुश हूँ, सिर्फ मुझे तौफीक दे। और अगर सूरत हाल दूसरी है तो फिर इकरार करके माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जिनको ऐसी दुआ की ज़रूरत है खामोशी से अपने कदमों पर खड़े हों ताकि हम खुदावंद के फजल के तख्त के सामने चलें, ताकि हम पर रहम हो और खुदा से वो फजल हासिल करें जो हमारी अशद ज़रूरत है। और कितनी मुबारक हाली की बात होगी कि अगर हम ये कह सकें मैं जिस राह पर चलता हूँ या रास्ते पे चलता हूँ वो जानता है, वो जानता है मैं किस कदर गुनाहगार नाफरमान बदकार सरकश बागी हूँ या नहीं हूँ, वो दोनों सूरतों में मुनसिफ वो है। मैं अपना मुनसिफ नहीं हूँ, कोई और मेरा मुनसिफ नहीं, वो मुनसिफ है। जब वो मुझे तालेगा, बहनों भाइयों मैं और आप किसी को मत ताएं, ये खुदा का काम है, पिघलाना, आग में से गुजारना, रूहे सुजान के वसीले से पाक करना, ये खुदा का काम है, मेरा और आपका नहीं है। हमें अपनी अपनी ज़िंदगी दुरुस्त रखनी है, हमें अपना अपना ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त रखना है। और उसका तरीक़ेकार यही है कि हम जब ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरे तो हम खुदा के साथ सुलह रखें। अगर हमारा ज़मीर ये कहता है कि तू अपनी इस हरकत और इन हरकात की वजह से तू खुदा को नाराज़ कर चुका है, उसकी तूने तोहीन की है, तकफीर की है, तेरी वजह से हुई है और हो रही है, इस सूरत हाल में मुआफ़ी, सच्ची मुआफ़ी, सच्चा इकरार करने की ज़रूरत है, सिर्फ खुदा के सामने बातन में। दूसरी सूरत में अगर हम साफ दिली से खुदा की इबादत करते, खुदा का रूह हमें मलामत नहीं करता, कसूरवार नहीं ठहरा रहा, और खुदा वो सात मकासद जो कलाम की बुनियाद पर मैंने आपको समझाए हैं वो हमारी ज़िंदगी में उनमें से हमें गुजार रहा है, तो फिर शुक्रगुजारी करें कि मैं खुदा मुझे साफ कर रहा है, खुदा मुझे कामलियत की तरफ ले जा रहा है, खुदा मुझे परफेक्ट कर देगा, खुदा मेरी मेरी कांट छाट करेगा, और मैं चाहता हूँ मेरी हो ताकि मैं और ज़्यादा फल लाऊँ, मेरे बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो।